हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम।
आज हम भक्तों के लिए परम पवित्र दिन है, क्योंकि आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य श्री प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए अमेरिका पहुंचे थे। कहा जाता है जब श्री प्रभुपाद जी अमेरिका के उस बोस्टन नाम के बंदरगाह पर उतरे, उस समय प्रभुपाद जी को पता नहीं था मुझे राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है। तब श्री प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर भजन का निर्माण किया। आइए आज का प्रवचन इस दिव्य भजन के प्रारंभ से करेंगे। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरा प्रति, बड़ो कृपा बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरा प्रति, बड़ो किला दिया नीले था करो ए बेगति, किला आज की छुकार्य तब हे अनुमाने, आज की आचे की छुकार्य तब हे अनुमाने, आचे नहे के नो आनी बेना हे उग्रसाने, रजसम गुणे रा सबाई आचन, रजस रजसम गुणे रा सबाई आचन, रजस वासुदेव कता रुचि नहि से प्रसन्न, तब जदि तो भव कृपा हो है तो के सब जग तब जग तव कृपा हो है तो के तब सकले संभव होय तुम्हें से को तो के की भावे बुझाले तारा बुझे से रस की बा की भावे बुझाले तारा बुझे से रस एत कृपा करो प्रभु कोरी निज वश तुमार इच्छाए सब होय माया वश तुमार तुमार इच्छाए सब होय माया वश तुमार इच्छाय नाच मायार परश तुमार तव इच्छा हो यदि तादेर उधार तव तव इच्छा हो यदि तादेर उधार बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुमार भागवत कथा ते तव अवतार भागवत कथा ते तव अवतार ज बिरहैया सुने जगी कान बार बार सुनवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिरीयन्तस्तो हि भद्राणि विधुनोति सुहर्षताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती ने तदा रजस्तमो भावा कामलोभादय श्रये चेतये तेरनाविद्वम् स्थितं सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद् भक्ति योगत भगवतत्व विज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथि चिदन्ते सर्वसंशया शियन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे रजसमोहते तबे पाइबे निसार हृदयेर भद्र सब ऊचि बेसहार की कोरे बुझाबो कथा बरसे शूद्र आमि दीन हीन कोनो शक्ति नाही अथच येने चो प्रभु कथा बोली वारे अथच जे तुमार इच्छा प्रभु करो ये बारे अखिल जगत गुरु वचन से मार अलंकृत कोरी बार क्षमता तो मारा तव कृपा हले मोर कथा शोध बे सुनिया सबार शोक दुख जे घुचे बे आनिया शोक भोजे हमारे नाचाते आनिया नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मचे नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते नचाओ प्रभु भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब धरो भक्ति भक्ति वेदांत नाम ए वेदार्थ करो भक्ति भक्ति वेदांत नाम हे वेदार्थ को रो बड़ो कृपा कहले कृष्णा पद मेर प्रति बड़ो की लागी यानी ले था करो ये बेगति जय राम माधव कुंज बिहार जय राधा माधव कुंज बिहार जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन सारे यमुना तीर वन सारे जय राधा माधव कुंज बिहार जय गोपी जन वल्लभ निर्मल जय यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रजन रंजना यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी राधा माधव कुंज बिहार राधा माधव राधा माधव गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जगन्नाथ जगन्नाथ बनते जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा हाँ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय भगवान जय जय प्रभुपाद 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 नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंध 9 अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 15 द्रुप्तं शत्रं भुवो भारम् ब्रह्मण्यमनीनश रजस्तमो वृतमहन् फल्गुण्यपि कृतिं महसि दृप्तं शत्रं भुवो भारम् ब्रह्मण्यमनीनश रजस्तमो वृतमहन् फल्गुण्यपि कृतिं महसि दृप्तं शत्रं भुवो भारम् ब्रह्मण्यमनीनश रजस्तमो वृतमहन् फल्गुण्यपि कृतिं महति शब्दार्थ दृप्तम अत्यंत गर्वित शत्रम क्षत्रियो को भूवः पृथ्वी के भारम भार को अब्रह्मण्यम पापी ब्राह्मणों के बनाए धार्मिक नियमों की परवाह न करने वाले अनीनश निकाल दिया अथवा विनष्ट कर दिया रजह तमह रजो था तमोगुण से वृत्तम ढके हुए अहन मार डाला फलगुनी बहुत बड़े नहीं अपि यद्यपि कृते किया गया अमहसी अपराध। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार से है, जब राजवंश रजोगुण तथा तमोगुण के कारण अत्यधिक गर्वित होकर अधार्मिक बन गया और ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों की परवाह न करने लगा तो परशुराम ने उन सबको मार डाला। यद्यपि उनके अपराध बहुत बड़े नहीं थे किंतु धरती का भार कम करने के लिए उन्होंने उन्हें मार ही डाला। तात्पर्य इस प्रकार से है, क्षत्रियो या शासक वर्ग को महान ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों द्वारा बनाए गए विधि विधानों के अनुसार संसार पर शासन करना चाहिए। जो ही शासक वर्ग धार्मिक नियमों की अवहेलना करता है कि यह पृथ्वी के लिए भार बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, रजस तमो व्रतम भारम अब्रह्मण्यम। जब शासक वर्ग रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित होता है तो वह विश्व के लिए भार बन जाता है और तब उसे मन शक्ति द्वारा विनष्ट किया जाता है। हम आधुनिक इतिहास में देखते हैं कि राजतंत्रों को विभिन्न क्रांतियों ने विनष्ट कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश राजतंत्रों के विनाश के बाद तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। यद्यपि राजतंत्रों को रजो तथा तमोगुण ने परास्त कर दिया है किंतु विश्व के वासी अब भी दुखी है, क्योंकि राजाओं का शासन व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग के लोगों ने ले लिया है जो और भी गिरे हुए हैं। जब सरकार का मार्गदर्शन ब्राह्मण या ईश्वर भक्त लोग करते हैं तभी लोग सुखी रहते हैं। अतएव प्राचीन काल में जब शासक वर्ग रजो तथा तमो गुणों के कारण पतित हो गया तो परशुराम से क्षत्रिय तुल्य ब्राह्मण ने इनका 21 बार वध कर दिया। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कलयुग में दस्यु प्रायेषु राजसु, शासक वर्ग लुटेरे दस्यु की तरह होगा, क्योंकि सरकारी राजकाज में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लोगों का प्राधान्य हो जाएगा। वे धार्मिक नियमों का तथा ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित विधि विधानों की अवहेलना करते हुए नागरिकों की सम्मति को मनमाना लूटेंगे, जैसे कि श्रीमद् भागवत में अन्यत्र आया है, असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसावृता प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्य रूपिण। अशुद्ध होने, ठीक से मानव कर्तव्य को न करने एवं रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित होने के कारण अशुद्ध लोग सरकारी कर्मचारी बनकर नागरिकों को निगल जाएंगे। एक अन्य स्थान पर भी भागवत में कहा गया है, एवं प्रजा भी दुष्टा भी आकिरणे क्षिति मंडले ब्रह्मविद क्षत्र शूद्राणाम यो बलि भवितान रिपह। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, मानव समाज चार विभागों में बटा है, किंतु यदि इस तंत्र की अवहेलना की जाती है और समाज के गुण एवं विभागों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इसका परिणाम होगा ब्रह्मविद क्षत्र शूद्राणाम यो बलि भवितान रिपह, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र की तथा कथित जाति प्रथा निरर्थक होगी। फलस्वरूप जो भी येन केन प्रकारेण शक्तिशाली होगा वही राजा या राष्ट्रपति बन जाएगा और इस प्रकार राजा को इतना सताया जाएगा कि वह घर बार छोड़कर जंगल चला जाएगा, जिससे वह उस सरकारी अफसरों के उत्पीड़न से बच सके जो निर्दय एवं लुटेरों जैसी वृत्ति के हैं। इसलिए प्रजा को कृष्ण भावनामृत आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान का शब्द अवतार है, कलिकाले नाम रूप कृष्ण अवतार। अब अपने पवित्र नाम के अवतार रूप में कृष्ण प्रकट हो चुके हैं, अतएव जब प्रजा कृष्ण भावना भावित हो जाएगी तभी वह अच्छी सरकार, अच्छा समाज, पूर्ण जीवन तथा भव बंधन से मुक्ति की आशा रख सकती हैं। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे प्रजानिने निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रतिदिवसीय इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है श्री प्रभुपाद जी की कृपा से श्रीमद् भागवत हम प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। श्री वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत को निगम कल्प तरु गलितम फलम कह रहे हैं। इस संसार में भागवत की महिमा बताते हुए अनेकों संत आचार्य श्रीमद् भागवत को अनेकों वस्तु के साथ तुलना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये भागवत कल्प वृक्ष के समान है, कुछ लोग कहते हैं ये भागवत निगम कल्प तरु का पका हुआ फल है, कुछ लोग कहते हैं ये भागवत साक्षात अमृत है। परंतु कुछ दिन पहले मैंने एक संत के मुख से सुना कि ये भागवत निगम कल्प तरु हो सकता है, ये भागवत कल्प वृक्ष हो सकता है, भागवत अमृत भी हो सकता है, परंतु जहां तक मेरा मानना है वहां तक ये भागवत न तो कल्प वृक्ष है न निगम कल्प तरु। वास्तव में मेरी बुद्धि से यदि मैं भागवत को देखूं तो यह भागवत बेर का वृक्ष है। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि भागवत को बेर का वृक्ष उस महात्मा ने क्यों कहा। वे कहते हैं ये भागवत बेर का वृक्ष है, और बेर में भी आपने देखा है जो छोटे छोटे बेर होते हैं लाल रंग के, तो ऐसे बेर का जो वृक्ष होता है उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई कि उस बेर को जब हम तोड़ने जाते हैं उस बेर के वृक्ष के नीचे, हम कितना भी सतर्क रहें कितना भी प्रयास करें परंतु उस बेर को जैसे ही तोड़ने जाते हैं तो उस बेर के वृक्ष के कांटे हमारे शरीर में या हमारे कपड़े में लग जाते हैं। वो बेर तोड़ने वाला जानता है कि ये कांटे लगेंगे, लेकिन फिर भी कितना भी सतर्क रहे, हमने तो नहीं तोड़ा है लेकिन गांव में जिन्होंने बेर को तोड़ा होगा उस छोटे छोटे बेर को, उनको पता होगा कि जैसे ही बेर को तोड़ते हैं तो कांटे कपड़े में लग ही जाते हैं। तो जैसे कितने भी सतर्क रहे परंतु उस बेर के वृक्ष के नीचे जाकर उस बेर को तोड़ते हैं तो एक दो या तीन चार कांटे तो लग ही जाते हैं। उस संत ने बहुत सुंदर बात बताई, ये भागवत उस बेर वृक्ष की तरह है। आप इस भागवत के सानिध्य में आकर बैठ जाओ दो तीन या पांच कांटे तो अवश्य लग जाएंगे। इस भागवत के सिद्धांत रूपी कांटे हमारे हृदय में लग जाएंगे जिससे हमारा हृदय परम पवित्र हो सकता है। तो भागवत अनेकों सिद्धांत कथा और भक्ति रस से भरा हुआ ग्रंथ है, और श्रीमद् भागवत की यह भक्ति रस धारा श्री प्रभुपाद जी की कृपा से प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में बह रही है। आज परम पवित्र दिन है, आज ही के दिन श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत गीता और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए अमेरिका में पहुंचे। परंतु आप सब जानते हैं श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए लगभग 70 साल की आयु थी और उन्हें उस मालवाहक जहाज में हृदय के दोहरे हार्ट अटैक हुए। इस संसार में जब किसी व्यक्ति को थोड़ी सी बीमारी आ जाती है व्यक्ति नर्वस होता है, चिंतित हो जाता है। हम लोग 16 माला जाप करने का व्रत लिए हैं, मंगला आरती आते हैं, परंतु कभी कभी थोड़ी सी सर्दी लग जाती है सोचते हैं आज मंगला आरती नहीं जा पाएंगे। थोड़ा सा बुखार आ जाता है सोचते हैं आज 16 माला नहीं होगी। श्री प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आ गया, 70 साल की आयु थी और जहां जा रहे थे वहां कहां जाना है, किससे मिलना है, प्रभुपाद जी को कुछ ज्ञान नहीं था, कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। उस समय श्री प्रभुपाद जी के हृदय में एक आशंका हुई, एक नर्वसता हुई। श्री प्रभुपाद जी कुछ समय के लिए नर्वस हो गए और उस समय श्री प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर भजन का निर्माण किया। कहते हैं प्रभुपाद जी बहुत बड़े विद्वान थे, भगवान के परम शुद्ध भक्त थे और इसी के साथ साथ वे बहुत बड़े कवि भी थे। उन्होंने तुरंत अपनी कलम चलाई और एक आत्यंतिक सहसा एक भजन का निर्माण किया और ये भजन प्रभुपाद जी के शब्द नहीं, वाक्य नहीं, ये भजन जो है प्रभुपाद जी का हृदय है। अपने हृदय से जो उद्गार निकला श्री प्रभुपाद जी ने अपनी कलम से लिख लिया। वे लिखते हैं, बड़ो कृपा कोयले कृष्ण अधम मेरे प्रति। भगवान श्री कृष्ण ने इस अधम जीव के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। परंतु किला गिला नीले हेता करो एवे गति। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने मुझे यहां अमेरिका में क्यों भेजा है ये मैं नहीं जानता हूं। की लागिया आछे किछु कार्य तब यही अनुमाने, नहे केनो आनी बेन यही उग्र स्थान है। भगवान ने मुझे इस उग्र स्थान में क्यों भेजा है ये मैं नहीं जानता हूं, परंतु निश्चित भगवान को कुछ अपना कार्य सिद्ध करना होगा, भगवान को अपना काम सिद्ध करना होगा, इसीलिए भगवान ने मुझे यहां पर भेजा। रजस्तमो गुणो एरा सबाई आच्छन्न। यहां पर सब लोग रजोगुण और तमोगुण से आच्छन्न है, प्रसन्न है। वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न। और इस अमेरिका के तमोगुणी लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में रुचि रखेंगे। तबे यदि तव कृपा होई अहे तुकी, सकल ही संभव होई तुम्हें से को तुकी। जो लोग कृष्ण कथा में रुचि नहीं रखते हैं ऐसे लोगों को कृष्ण कथा कैसे सुनाऊंगा। परंतु हे कृष्ण, यदि आपकी कृपा हो, आपकी अहे तुकी कृपा उन पर हो जाए तो निश्चित वे आपकी कथा सुन सकते हैं। कि भावे बुझाले तारा बुझे से ही रस, एत कृपा करो प्रभु कोरी निज वश। आपकी भक्ति के भाव को, रस को वह तमोगुणी लोग कैसे समझ सकते हैं। परंतु हे प्रभु, हे कृष्ण, यदि आपकी कृपा हो जाए तो आपकी कृपा से वे लोग आपके भक्ति के रस को, भाव को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तव इच्छा है यदि ताहेर उद्धार, बुझीबे निश्चय तबे कथा से तुम्हार। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो आपकी कथा सुनकर उन पापी जीवों का, तमोगुणी जीवों का उद्धार हो सकता है। भागवतेर कथा से तव अवतार, धीर हैया सुने यदि कान बार बार। हे प्रभु, आपका अवतार ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के रूप में हुआ है, यदि कोई व्यक्ति धीर होकर एक स्थान पर बैठकर आपकी कथा को बार बार सुनता रहे तो निश्चित उनका उद्धार हो सकता है। श्री प्रभुपाद जी भागवत के उन दिव्य श्लोकों की याद करते हैं जिनमें भगवत कथा की महिमा बताई गई है। शुणवताम स्वकथाम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनकर व्यक्ति का हृदय पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। कृष्ण कथा को बार बार सुनकर नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु, ये श्लोक हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत क्लास के प्रारंभ में बोलते हैं। भागवत का यह प्रसिद्ध श्लोक है, नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। भागवत का सेवन करने से, भागवत का श्रवण करने से क्या होगा? तो सर्वप्रथम कहते हैं नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु, हमारे जितने भी अभद्र हैं, दुष्कर्म है, दुर्गुण है, पाप है, ये सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु एक शब्द जो है भक्तों की बुद्धि में प्रश्न उत्पन्न करने वाला है, भागवत सुनकर नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु। प्राय का अर्थ होता है प्राय, प्राय लगभग, तो लगभग का अर्थ 100% नहीं होता है। यदि हम विचार करें, यहां पर कह सकते थे नष्ट पूर्ण अभद्रेशु, जितने भी अभद्र हैं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे, परंतु पूर्ण न कहते हुए प्राय कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत को सुनकर नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु, प्रायेशु कहने का अर्थ यह है, एक आचार्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भागवत सुने परंतु भागवत सुनकर भागवत भक्तों का अपराध करे, तो व्यक्ति कितना भी भागवत सुने परंतु भागवत भक्तों का अपराध यदि करे तो ऐसे अपराधी जीव को भागवत भी शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए नष्ट आयेशु भद्रेशु, भागवत उसी व्यक्ति को परम पवित्र करता है जिसके हृदय में पाप है, दुर्गुण है। नित्यम भागवत सेवाया, भागवत सुनने से अभद्र नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, भगवती उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। और कैसी भक्ति? कहते हैं नष्ट की शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी भागवत की महिमा बताते हैं और अंत में वे कहते हैं कि हे कृष्ण, आप अखिल जगत के गुरु हो, पूर्ण संसार के सब के आप ही गुरु हो, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अखिल जगत गुरु वचन से आमार, अलंकृत कोरी बार क्षमता तुम्हार। हे प्रभु, मेरी वाणी को अलंकृत करना ये मात्र आपका ही काम है। इस संसार में किसी व्यक्ति में कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी बुद्धि हो, परंतु उस व्यक्ति के ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा न हो तो ज्ञान होते हुए भी, बुद्धि होते हुए भी, वह व्यक्ति उस ज्ञान को बोल नहीं सकता है, प्रस्तुत नहीं कर सकता है। और इसका ज्वलंत प्रमाण है दिग्विजयी केशव कश्मीरी। आप सब जानते हैं कि दिग्विजय केशव कश्मीरी सरस्वती देवी का उपासक था, अपनी तपस्या से, साधना से देवी सरस्वती को प्रसन्न कर चुका था। और उसको इतना अभिमान हुआ, अहंकार हुआ कि मैं इस जगत के समस्त विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करूंगा और पूरी दुनिया का एक विख्यात ज्ञानी बन जाऊंगा। ये दिग्विजय केशव कश्मीरी ही पूर्ण जगत में, संपूर्ण भारत में, प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक राज्य में विचरण करते हुए जितने भी ज्ञानी पंडित होते थे उनके साथ शास्त्रार्थ करता था। और कहते हैं अकेला नहीं चलता था, उनके साथ अनेकों सैनिक, अनेकों लोग चलते थे। और जो लोग उससे हार जाते थे उसे वह बंदी बना लेता था। तो ये दिग्विजय केशव कश्मीरी ही विचरण करते करते नवद्वीप में आया, जहां पर चैतन्य महाप्रभु, जिनका नाम अभी निमाई है, वहां रहते थे। और उस समय नवद्वीप में रहने वाले लोग चिंतित हो गए, ये दिग्विजय यहां पर आएगा और हमारे साथ शास्त्रार्थ करेगा, हम हार जाएंगे, हमें बंदी बनाकर लेकर चला जाएगा, क्या करें। सब लोग ने मीटिंग की और जब दिग्विजय केशव कश्मीरी नवद्वीप में आया, मायापुर में आया, और लोगों को पूछा यहां पर मेरा शास्त्रार्थ कौन करेगा, क्योंकि उस समय नवद्वीप जो था विद्वानों का गढ़ था, बड़े बड़े विद्वान नवद्वीप में वेद पाठ, वेद शास्त्र का अध्ययन करते थे। तो पूछा यहां पर मेरे साथ शास्त्रार्थ करे ऐसा कौन है, तो सब लोग ने डर के मारे कह दिया कि हमारे गांव में एक बालक है जो आपके साथ शास्त्रार्थ कर सकता है। बोले कौन? उनका नाम, बोले निमाई पंडित। तब ये तुरंत निमाई पंडित के पास आया, गंगा नदी के तट पर चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में उपस्थित थे और दिग्विजय केशव कश्मीरी ने कहा मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं आपके साथ शास्त्रार्थ कैसे करता हूं, मैं तो एक बालक हूं और मेरे में क्या बुद्धि है, मेरे में क्या योग्यता है कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ कर सकूं। परंतु मैंने सुना है कि आप महान विद्वान हो, पंडित हो, बस आप कि मैं पंडिताई देखना चाहता हूं, आप कितने विद्वान हो। आप एक काम कीजिए, गंगा के विषय में कुछ सुना दीजिए। उसी समय दिग्विजय केशव कश्मीरी ने तत्कालीन, पूर्व से रचे हुए नहीं, तत्कालीन अपनी बुद्धि में अनेकों श्लोकों की रचना की और झांझावात तूफान की तरह उन्होंने लगभग 500 श्लोक बोल दिए, एक के बाद एक श्लोक की रचना करते हुए बोल दिए। और समस्त श्लोक बोलने के बाद कहा, सब लोग ने ताली बजाई, सब लोग वाह वाह करने लगे और निमाई पंडित को पूछा कैसा लगा मेरा ज्ञान, मेरी पंडिताई कैसी लगी। निमाई पंडित ने कहा बहुत सुंदर, आप जैसा पंडित तो इस संसार में कोई हो नहीं सकता। परंतु बुरा न लगे तो एक बात कहूं, आपकी इन रचना में गंगा देवी की प्रसन्नता करते हुए आपने पांचवें श्लोक में थोड़ी सी गलती कर दी, आपको बुरा न लगे तो एक छोटी सी गलती बताऊं। तो उस समय निमाई पंडित ने उस केशव कश्मीरी दिग्विजय की गलती बताई और अपनी गलती को सुनकर दिग्विजय केशव कश्मीरी पानी पानी हो गया। और उस दिन रात को अपने घर पर जाकर देवी सरस्वती को प्रकट किया और देवी सरस्वती प्रकट हो गई और कहा आपने मुझे आशीर्वाद दिया था मैं जगत में किसी के साथ नहीं हारूंगा, किसी भी मनुष्य के साथ मैं शास्त्रार्थ करूंगा तो मैं विजय हो जाऊंगा, मैं हारूंगा नहीं, तो आज मैं क्यों हार गया, आज आपने मुझे क्यों बदनाम कर दिया। तब देवी सरस्वती ने इतना ही कहा मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि इस जगत में रहने वाले किसी भी मनुष्य के साथ तुम हारोगे नहीं, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम भगवान के साथ शास्त्रार्थ करोगे और जीत जाओगे, आज तुम जिसके साथ शास्त्रार्थ करके आए वो इस जगत का कोई साधारण आदमी नहीं, वो तो साक्षात भगवान है और भगवान के साथ शास्त्रार्थ करके जीतना चाहते हो। भक्तों कहने का तात्पर्य यह है, सरस्वती देवी का कितना भी बड़ा उपासक क्यों न हो, जिसकी जीवा पर साक्षात सरस्वती भी क्यों न बैठी हो, परंतु जब तक कृष्ण की कृपा न हो तब तक व्यक्ति अपने ज्ञान को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसलिए शोपाजी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कृष्ण आप अखिल जगत गुरु, संसार के गुरु हो, अलंकृत करी बार क्षमता तो मार, बस आप मेरी वाणी को अलंकृत कीजिए। तो भक्तों इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यदि चाहे तो बड़े बड़े पंडित को मूर्ख बना सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण यदि चाहे तो मूर्ख को पंडित भी बना सकते हैं। यह बात शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती से कही। जब देवी पार्वती ने कहा, भगवान श्री रामचंद्र के अवतार का कारण बताते हुए शिव जी ने कहा कि देवी पार्वती भगवान राम का अवतार एक कल्प में नारद जी के श्राप के कारण हुआ, तो नारद जी देवी पार्वती के गुरु थे, तुरंत अपने गुरु का अपमान सुनकर देवी पार्वती बोलने लगी कि हो नहीं सकता है, नारद जी जैसे बुद्धिमान, नारद जी जैसे ज्ञानी कभी भगवान को दंड नहीं दे सकते हैं, कभी भी भगवान को श्राप नहीं दे सकते हैं। तब शिव जी ने कहा कि हे देवी पार्वती, संसार में इस जगत में न तो कोई मूर्ख है, न तो कोई बुद्धिमान है, न कोई ज्ञानी है, न कोई मूर्ख है, इस संसार में भगवान की जिन पर जैसी और जितनी कृपा होती है वे व्यक्ति तब वैसा बन जाता है। मुकम करोति वाचालम, यदि भगवान की कृपा हो तो गूंगा व्यक्ति भी, गूंगे व्यक्ति को भी वाचा प्राप्त हो सकती है, यदि भगवान की कृपा हो तो एक मूर्ख व्यक्ति भी सर्वशास्त्र सिद्धांत को जान सकता है। चैतन्य मंगल में बहुत सुंदर कथा आती है, भगवान की यदि कृपा हो तो इस संसार के मनुष्य के मुख से वेद शास्त्र और भगवान का नाम बुलवाए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो कुत्ते के मुख से भी भगवान का नाम बुला सकते, मनुष्य की बात तो दूर है। कई बार हम लोग चिंतित होते हैं कि हम कैसे प्रचार करेंगे, प्रभुपाद जी की इस प्रचारक संस्था में है, प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी है आप प्रचार करो, तुम कैसे प्रचार करेंगे। परंतु बहुत बड़ा श्री प्रभुपाद जी एक भाव दे रहे हैं, सोलंक श्रेष्ठ आप मेरी वाणी को अलंकृत कीजिए, क्योंकि भगवान की कृपा हो तो कुत्ता भी भगवान का नाम बोल सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने उस शिवानंद सेन के कुत्ते के मुख से भगवान का नाम बुलवाया, राधे कृष्ण कहते हुए वो कुत्ता नाचने लगा। और इतना ही नहीं, उस कुत्ते के मुख से भगवान का नाम सुनकर उस नवद्वीप में रहने वाले सब लोग भगवान का नाम लेने लगे, सबकी आंखों से अश्रु की अजस अविरत धारा होने लगी। और वह कुत्ता इतना नाचा, इतना कीर्तन किया, इतना भगवान का नाम लिया, नाचते नाचते वह कुत्ता थक गया, मूर्छित होकर गिर गया, उनके शरीर से प्राण निकल गए। और उसी समय आकाश के मार्ग से एक दिव्य रथ आया और शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान के पार्षद उस कुत्ते को लेकर अपने धाम में चले गए। भगवान की यदि कृपा हो तो कुत्ते के मुख से भी भगवान का नाम बुला सकते हैं और उनको अपना धाम प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हे कृष्ण, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, आप मेरी वाणी को अलंकृत कीजिए। आनी आचे यदि प्रभु आमारे नाचाते, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ सिमत। हे प्रभु, मैं तो एक काष्ठ की पुतले के समान हूं और आप इस जगत के स्वामी हो, जिस प्रकार से मुझे नचाना है उस प्रकार से नचाइए। परंतु सत्य बात तो यह है, भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब धरो। मेरे में किसी भी प्रकार की भक्ति नहीं, श्री प्रभुपाद जी की यह दयनीयता है, नम्रता है। बोले मेरे में भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, परंतु हे प्रभु मुझे आप में विश्वास अवश्य है। मुझ में भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, परंतु एक चीज मुझ में है और वो है विश्वास। आप में मुझे विश्वास है कि भक्ति वेदांत नाम, मेरे गुरु ने जो मेरा नाम रखा है भक्ति वेदांत, आप गुरु के द्वारा दिए गए इस नाम को सार्थक होगे, मुझे ये विश्वास। और मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि गुरुदेव की जो आज्ञा है मैं पूर्ण कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। तो भक्त श्री प्रभुपाद जी का यह उद्गार और श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका के उस पापी तापी लोगों का उद्धार करने गए और जब सोचा कि उन लोगों का उद्धार कैसे होगा, तब श्री प्रभुपाद जी को श्रीमद भागवत की याद आई। भक्तों, भागवत कितना हूं पापी व्यक्ति क्यों न हो, यदि कोई व्यक्ति भागवत सुन लेता है तो उनका उद्धार हो जाता है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था का आधार श्रीमद भागवत, भगवत गीता और हरिनाम को रखा। तो आइए उसी भागवत का हम सब आश्रय लिए हैं और उस भागवत सत्र के अंतर्गत हम भागवत के नवम स्कंद के 15वें अध्याय में पहुंचे हैं। भागवत का यह नवम स्कंद ईशानु कथा के अंतर्गत है। भागवत के इस स्कंद में भगवान के द्वारा किस प्रकार उनके भक्तों के ऊपर कृपा हुई, उस कृपा का वर्णन इस स्कंद में किया गया है। इस अध्याय में और इस श्लोक में आज परशुराम जी का जन्म हो रहा है, परशुराम जी के जन्म की कथा सुना रहे हैं। परंतु गत सत्र में कुछ भक्त जो नहीं आए होंगे और विशेष भक्तों के द्वारा गत सत्र में जो प्रवचन हुए उनका अवशिष्ट लेते हुए स्मरण कराते हुए आज के श्लोक के ऊपर हम व्याख्या करेंगे। आप जानते हैं कुछ दिनों से यहाँ पर ऋचिक ऋषि की कथा हो रही है। राजा गाधी की पुत्री का नाम था सत्यवती। कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कुश, कुश के पुत्र हुए कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी, और गाधी की एक पुत्री एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। गाधी जी ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ कराया। ये ऋचिक ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु, मनु के पुत्र हुए च्यवन, च्यवन के पुत्र औरव, और औरव की औरव के पुत्र थे ऋचिक। तो राजा गाधी ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ कराया। विवाह के कुछ दिन के बाद सत्यवती ने अपने पति से पुत्र की कामना की और अपने पत्नी की कामना को पूर्ण करने के लिए ऋचिक ऋषि ने बहुत सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किया। और उसी समय सत्यवती की माँ या राजा गाधी की पत्नी सत्यवती को मिलने के लिए उनके घर पर आई थी और उनको पता चला मेरी पुत्री को पुत्र प्राप्त हो इसलिए हमारे दामाद यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने निवेदन किया कि आप अपनी पत्नी के लिए चरु उत्पन्न कर रहे हो, साथ ही साथ मेरे लिए भी चरु उत्पन्न करो क्योंकि मुझे भी एक संतान की आवश्यकता है। तब ऋचिक ऋषि ने यज्ञ किया और उस यज्ञ से दो चरु उत्पन्न किया, एक चरु अपनी पत्नी के लिए और दूसरा चरु अपनी सास के लिए। तो दो चरु उत्पन्न किए। सुखदेव स्वामी कथा सुनाते हुए कहते हैं, स ऋषि प्रार्थित पत्निया स्वश्रवा चा पत्य काम्यया शपयित्वो उभये मंत्रे चरु स्नातु गतो मुनिहि। अपनी सास के निवेदन करने पर ऋचिक ऋषि ने अपनी सास के लिए और अपनी पत्नी दोनों के लिए चरु उत्पन्न किए और मंत्र के द्वारा उस चरु में मंत्र अभिहित करके दोनों चरु उत्पन्न हुए। और जैसे ही चरु उत्पन्न हुए उसी समय स्नातुम गतो मुनि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऋचिक ऋषि स्नातुम गतो स्नान करने के लिए चले गए। अब चरु तत्कालीन उत्पन्न हुए हैं और उत्पन्न होते ही स्नान करने के लिए चले गए। और यहां पर सुखदेव गोस्वामी संबोधन देते हुए कहते हैं मुनि, ऋचिक ऋषि को मुनि कह रहे हैं। एक आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं मुनि का अर्थ यह है कि ऋचिक ऋषि ने जब चरु उत्पन्न किया और चरु उत्पन्न करके तुरंत स्नान करने चले गए उस समय उनका मौन था, उस समय उन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं किया था कि ये चरु सत्यवती तुम्हारा है और ये तेरी माँ का है, दोनों अपना अपना चरु ही पीना। नहीं, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं थी। एक आचार्य का भाव है, अपने टीका में लिखा है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी श्लोक में ऋचिक ऋषि को मुनि कह रहे हैं। मौन व्रत धारण करके मौन होकर वे वहां से चले गए और वे तो चले गए और ये दोनों आपस में चर्चा करने लगे। वह सत्यवती की मां सत्यवती से कहने लगी कि संसार में सब लोग अपनी पत्नी से ही अपने से ही प्रेम करते हैं और जगत में तो स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं है, तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए जो चरु उत्पन्न किया होगा वो तो बड़ा गुणवान चरु होगा, उससे जो पुत्र की प्राप्ति होगी बड़े गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी, और सास को कौन पूछता है, मेरे लिए जो चरु होगा वो इतना ठीक नहीं होगा, तुम्हारा थोड़ा बेटर होगा मेरा थोड़ा वीक होगा। लेकिन बेटा सत्यवती तुम तो जानती हो कि हम लोग राजा हैं तुम ब्राह्मण, राजाओं को इस संसार में शासन करना होता है, इसलिए शासन करने के लिए पुत्र भी गुणवान होना चाहिए, राजा भी शासन होना चाहिए। बेटा मैं तुम्हें एक निवेदन करती हूं कि तुम्हारा जो चरु है वो मुझे दे दो, मेरा चरु तुम ले लो, और तुम्हें यदि ठीक पुत्र नहीं हुआ तो तुम्हारा पति तो घर के हैं, दूसरा चरु उत्पन्न करेंगे, घर की खेती। तो भक्तों उस समय ही दोनों चरु पड़े थे, किसका कौन सा चरु था ये पता नहीं था, लेकिन दोनों ने अपना अपना चरु पी लिया बदलकर। तो प्रश्न हो सकता है कि जब ऋचिक ऋषि आए और आकर वे क्रोधित हो गए, एक मन में ये भाव हो सकता है कि ऋचिक ऋषि बिना कहे वहां से चले गए थे और उनकी पत्नियों ने वह पत्नी ने और सास ने चरु खा लिया, तो क्या उनके द्वारा ये अपराध माना जा सकता है? क्योंकि कहकर गए होते कि ये तुम्हें खाना है और यदि नहीं खाया होता तो अपराध था, परंतु बिना कहे चले गए तब तो ये कुछ भी खा सकते थे। परंतु आचार्य कहते हैं ठीक है, ऋषिक ऋषि ही बिना कहे वहां पर स्नातुम गत स्नान करने के लिए चले गए, परंतु उनकी पत्नी को चाहिए कि जब तक पति वापस आए और पति की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर ही उस चरु को ग्रहण करे। इस संसार में आचार्यगण सिद्धांत बताते हुए कहते हैं, इस संसार में कभी किसी व्यक्ति को जीवन में कोई भी कार्य करना हो तो अपने वरिष्ठ से या अपने गुरुजनों से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर ही कार्य करना चाहिए। ऋचिक ऋषि की पत्नी को चाहिए था अपनी पति की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर वह कार्य करे, परंतु बिना आज्ञा के यह कार्य किया, इसलिए उनसे यह गलती हो गई और बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हम संसार में भी देखते हैं, इतिहास में भी देखते हैं, भगवान भी अपने आचरण से सुनाते हैं, समझाते हैं कि यदि जीवन में सामर्थ्यता हो, हमें योग्यता भी हो, परंतु जब तक गुरुजनों की आज्ञा न हो तब तक जीवन का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र से हम देख सकते हैं, जब भगवान राम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके जनकपुर की ओर जा रहे थे तो आश्रम एक दीख मग माही खग जीव जंतु तह नाही, वहां पर उन्होंने एक एक घर देखा, बहुत सुंदर घर महल बनाया हुआ था, परंतु वहां कोई नहीं रह रहा था, एक पत्थर पड़ा था। भगवान रामचंद्र ने पूछा कि ये पत्थर क्या है, यहां पर क्या कर रहा है? तो भक्तों मन में हम सोच सकते हैं, क्या भगवान को यह पता नहीं था कि ये किसका आश्रम है और गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है और श्राप के कारण पत्थर बन चुकी है? भगवान सब कुछ जानते थे, वेदम समतितानी वर्तमानानी अर्थ। लेकिन भगवान रामचंद्र ने एक बहुत सुंदर अपने आचरण से उपदेश दिया कि भगवान जानते थे जब तक मेरे चरण की रज इस अहल्या के मस्तक पर नहीं पड़ेगी तब तक इसका उद्धार नहीं होगा, और मेरे चरण की रज के लिए ही यहां पर बैठी है, परंतु जब तक मुनि विश्वामित्र ने आज्ञा नहीं दी तब तक भगवान श्री रामचंद्र ने अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। मुनि विश्वामित्र ने जब कहा कि गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, हे राघव हे रघुवीर आप जाओ अपना चरण कमल उनके मस्तक पर रखो और उनका उद्धार करो। गुरु की आज्ञा होते ही भगवान श्री रामचंद्र गए। भक्तों कहने का तात्पर्य यह है, इस संसार में हमारे जीवन में हमारे अंदर सामर्थ्य हो परंतु वरिष्ठ जनों की आज्ञा न हो तब तक वह कार्य, और यदि हम करेंगे तो वह कार्य पूर्ण नहीं होगा, ये सत्यवती की तरह वह कार्य बिगड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। और भी भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र में जब जनकपुर में गए और वहां जाकर धनुष यज्ञ सीता के साथ विवाह करने के लिए अनेकों राजा महाराजा उपस्थित हुए, देव धनुज सब लोग मनुष्य का रूप बनाकर आए और अनेकों लोगों ने धनुष को उठाने का प्रयास किया और धनुष नहीं उठा। राजा उठते थे और उठकर धनुष के पास जाते थे, सोचते थे बस एक झटके में उठा लूंगा, परंतु धनुष को स्पर्श करते ही मानो धनुष उस राजा की शक्ति को खिलिया, ऐसा लगता था। एक राजा नहीं उठा पाया तो दो दो राजा पार्टनरशिप में गए, तीन तीन राजा गए, चार चार राजा। रामायण कार ने तो लिख दिया भूप सहस्त्र एक ही बारा लगे उठावन टर ही न तारा, एक दो नहीं एक साथ 10,000 राजा खड़े हुए उस धनुष को उठाने के, परंतु इतने राजा खड़े होकर भी वह धनुष नहीं उठा। वह धनुष उठने की बात दूर ही, हिला भी नहीं। कैसे बिगति न शंभु चराचरी कैसे कामी वचन सती मन जैसे, जैसे कामियों के वचन की असर सती के मन के ऊपर नहीं होती है। कामी व्यक्ति कितना भी प्रयास करे परंतु सती उस कामी के वचन से मोहित नहीं होती है, उसका मन डिगता नहीं है, वैसे राजा के प्रयास से शक्ति बाहुबल से भी धनुष थोड़ा भी नहीं डिगा। और उस समय राजा जनक ने मर्माहित वचन कहे और लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर बिल्कुल लाल लाल हो गए। और उस समय लक्ष्मण जी ने राम को कहा, प्रभु ये जनक इस प्रकार से बोल रहे हैं और मैं इतना लाल लाल हो गया और आप इतने शांत बैठे हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तब भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को इशारे से कहा, लखन एक झटके में तोड़ दूं, परंतु क्या करूं, गुरु जी की आज्ञा नहीं है। इशारे 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 में ही भगवान राम ने कहा, और तुरंत विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, उठहु राम भंजऊ भव चापा। भगवान रामचंद्र जानते थे मुझे ही धनुष तोड़ना है, मैं ही तोड़ूंगा, परंतु जब तक विश्वामित्र की आज्ञा नहीं हुई तब तक वे खड़े नहीं हुए, धनुष को नहीं तोड़। आज्ञा से व्यक्ति के जीवन के कार्य सफल हो जाते हैं। वरिष्ठों की आज्ञा से जब हम कार्य करते हैं तब हम हमारे जीवन में सफल ही सफल होते हैं। महाभारत में आप देखिए, युधिष्ठिर महाराज ने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से आज्ञा क्या ले ली, पूरे महाभारत के युद्ध का निर्णय बदल गया। महाभारत के युद्ध का सार, युद्ध का जो निर्णय था बदल गया। यद्यपि महाभारत के युद्ध में आप देख सकते हो दुर्योधन का पक्ष बलवान था, दुरत्य सैन्य सागरम, परंतु युधिष्ठिर महाराज उस युद्ध के प्रारंभ में अपने रथ से उतरकर गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। बड़े भाई को रथ से उतरते देखकर चार भाई उनके पीछे भी रथ से उतर गए और पांचों भाई द्रोणाचार्य के पास गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके आज्ञा ली कि गुरुजी मुझे आपके साथ युद्ध करना है, मुझे आज्ञा दीजिए। बस गुरुजी से आज्ञा लेने गए और आशीर्वाद मांगने गए, उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने आज्ञा दी और आशीर्वाद दे दिया, विजयी भव। पितामह भीष्म के चरणों में गए, पितामह आज हम आपसे युद्ध करने जा रहे हैं, आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। पितामह भीष्म ने आज्ञा दे दी, आज्ञा है और आशीर्वाद देता हूं, इस कुरुक्षेत्र की भूमि में विजयी मात्र आपकी ही होगी। जिस देवव्रत बड़े बड़े देवताओं को हराने वाले पितामह भीष्म, परंतु आज्ञा लेने से पितामह भीष्म ने अपना सब कुछ दे दिया, यहां तक कि उनके सामने हार गए, झुक गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी कार्य करे तो किसी के अनुगत्य में रहकर, किसी के अनुशासन में रहकर, किसी वरिष्ठ और गुरुजन की आज्ञा से करे। इन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया और इनको चरु खाना ही था, सत्यवती को और उनकी मां को चरु खाना ही था, लेकिन पति की आज्ञा लेकर यदि चरु खाया होता तो बहुत अच्छा कार्य हुआ होता, परंतु बिना आज्ञा से वह चरु ग्रहण किया। तो कहते हैं तद विदित्वा मुनि प्राह, जैसे ही मुनि को पता चला, ऋषि ऋषि को पता चला कि इन्होंने चरु खा लिए हैं और दोनों चरु बदल गए हैं, तो प्राह पत्नी कष्ट कारशी घोरो दंड धरो पुत्र भ्राता ते ब्रह्मवित्तम। उस समय ऋषि ऋषि ने बहुत अफसोस किया, सत्यवती आज तुमने अनर्थ कर दिया, बहुत गलत काम कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने, मैंने जो चरु तुम्हारे लिए उत्पन्न किया था वह न खाकर तुम्हारी मां का चरु ग्रहण कर लिया, अब तुमने ये गलती की, इस गलती का दंड सजा तुम्हें भुगतना होगा, और इसीलिए तुम्हारी मां के वहां जो पुत्र का जन्म होगा वो ब्राह्मण स्वभाव का होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वो घोर स्वभाव का होगा, दंडधारी होगा, लोगों को दंड देने वाला और घोर स्वभाव का पुत्र होगा। यहां पर कह दिया घोर स्वभाव। प्रश्न हो सकता है कि सत्यवती सोच सकती थी कि ये मेरे पति कह रहे हैं कि मेरा पुत्र घोर स्वभाव का होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब मेरे पुत्र का जन्म होगा तो मैं उसे ऐसा संस्कार दूंगी कि उसका घोर स्वभाव बदलकर शांत स्वभाव हो जाएगा। ऐसा कोई सत्यवती सोच सकती थी कि पति भले कह रहे हैं कि घोर स्वभाव का होगा, लेकिन मैं संस्कार ऐसा दूंगी कि वो उसका स्वभाव शांत हो जाएगा। तो भक्तों यहां पर भी एक उपदेश प्राप्त होता है कि किसी भी व्यक्ति के संस्कार का आधार, जन्म के बाद मां और पिता के द्वारा जब संस्कार देते हैं ये तो है ही, परंतु उनके मूल संस्कार का आधार जब गर्भाधान होता है, गर्भाधान के समय पति पत्नी की जो चेतना होती है, उस चेतना के अनुसार उस आने वाले बालक के संस्कार का आधार होता है। इसलिए यहां पर कहा गया गौर स्वभाव, और मेरा पुत्र गौर स्वभाव का होगा यह सोचकर सत्यवती के हृदय में बहुत कष्ट हुआ, और तुरंत सत्यवती अपने पति ऋचिक ऋषि को मनाने लगी। एक आचार्य कहते हैं अनेकों प्रकार से उनकी सेवा करने लगी, और सेवा करते हुए अपने पति को प्रसन्न कर लिया और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे, आपने जो कहा था कि मेरा पुत्र घोर स्वभाव का होगा, बस आपके चरण में मैं निवेदन करती हूं, मेरा पुत्र घोर स्वभाव का न हो, मेरा पुत्र शांत स्वभाव का हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तब सत्यवती की सेवा को देखकर ऋचिक ऋषि प्रसन्न हो गए और कहते हैं प्रसादित सत्यवत्या, कहते हैं प्रसन्न होकर सत्यवती को कहा दैवम भूरिति भार्गव, कहते हैं सत्यवती अथ तर ही भवे पोत्रो, जो तुम्हारा पुत्र घोर स्वभाव का होने वाला था, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम पर कृपा कर रहा हूं कि अब तुम्हारा पुत्र घोर स्वभाव का नहीं होगा, तुम्हारा पुत्र शांत स्वभाव का होगा, परंतु तुम्हारे पुत्र का पुत्र जो है वो घोर स्वभाव का होगा। इतना डिस्काउंट। यहां पर भी एक सिद्धांत मिल रहा है कि यदि गर्भाधान कैसा भी हो, मान लो किसी व्यक्ति से कुछ गलत काम हो गया, परंतु कोई व्यक्ति उस गर्भवती अवस्था में किसी व्यक्ति की, किसी साधु की सेवा करते हैं, तो साधु या महत कृपा से व्यक्ति का स्वभाव भी बदल सकता है। इस संसार में स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है। ये जो प्रकृति मिली है, जो स्वभाव मिला है, कभी कभी भक्ति में आकर भी हम हमारा स्वभाव नहीं छोड़ सकते। परंतु यहां पर एक बहुत सुंदर उपदेश मिल रहा है कि महत कृपा से हम हमारे जो बुरा स्वभाव है, उस बुरे स्वभाव को छोड़कर अच्छा स्वभाव प्राप्त कर सकते, और इसका ज्वलंत प्रमाण है प्रहलाद महाराज। भागवत में प्रहलाद महाराज जब अपने सहपाठी बालकों को बहुत सुंदर उपदेश दिए, कुमार आचरित प्राज्ञो, बहुत सुंदर उपदेश दिया, और उस उपदेश सुनकर प्रहलाद महाराज के मित्र कहते हैं प्रहलाद, तू हमें ये बता कि इतना अच्छा भागवत का ज्ञान तुझे मिला कहां से? पहले तो ये बता, ये जीवन में उतारेंगे तो बाद में करेंगे, पहले तो इतना अच्छा प्रवचन सीखा कहां से? यहां गुरुकुल में तो शंड और अमर ने कभी हमको गीता और भागवत नहीं पढ़ाया, और न तो तेरे बाप के घर पर कोई साधु या संत का आगमन होता है, क्योंकि वहां तो नो एंट्री है, वो तो साधुओं को देखकर ही मारने पीटने लगता है, न तो तुम्हारे घर पर साधुओं का आगमन होता है, न इस गुरुकुल में साधुओं का आगमन हुआ, तो तुझे ये ज्ञान मिला कहां से? तब प्रहलाद महाराज ये इतिहास बताते हैं कि ये ज्ञान नारद मुनि की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। मेरी मां जब गर्भवती थी और अपनी सेवा से, अपनी प्रार्थना से नारद मुनि को प्रसन्न किया, और उस समय नारद मुनि ने मेरी मां को भागवत सुनाया, वहां पर एक प्रश्न उठा, बालकों ने, मानो आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि तो नारद मुनि ने दो जन को भागवत सुनाया, तुम्हारी मां को और तुमको, और तुम्हारी मां तो प्रकट रूप से भागवत सुन रही थी, तुम तो गर्भ में थे, तो तुम्हें जितना भागवत याद है गर्भ में रहकर भी, उतना तुम्हारी मां कयाधु को नहीं है। तुम जितनी अच्छी भागवत कर रहे हो, उपदेश दे रहे हो, भक्ति कर रहे हो, उतनी तुम्हारी मां नहीं कर रही है। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नारद मुनि जब ये भागवत सुना रहे थे, तब मुझ पर कृपा करते हुए भागवत सुना रहे, उनकी मुझ पर कृपा थी। तो भक्तों, नारद मुनि की कृपा से एक असुर का बालक भी महाभागवत बन गया। कहने का तात्पर्य है कि महत कृपा से हमारा स्वभाव बदल सकता है। और चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को भी कहते हैं कि जब तक महत कृपा का अवलंबन नहीं करेंगे तब तक न तो हमें भक्ति प्राप्त होगी, न तो हम भक्ति में टिके रहेंगे, न तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारी भक्ति जो है भक्ति लता के समान, हमारी भक्ति भक्ति लता बीज, भक्ति को लता के साथ उपमा दी गई है, न कि कोई वृक्ष के साथ। और आप सब जानते हैं लता कितनी भी बड़ी हो, लता 100 साल की भी क्यों न हो वो लता ही रहती है। वृक्ष 100 साल का हो जाए तो मोटा तगड़ा हो जाता है, लेकिन लता जो है, जो वेल होती है, लता होती है, वो लता की लता ही रहती है 100 साल की भी क्यों न। तो उस लता को यदि प्रोग्रेस करना है, मतलब लता को ऊपर की ओर बढ़ना है, तो उसमें कुछ सहारा चाहिए, है ना। कुछ लोग लता को ऊपर बढ़ाने के लिए एक लकड़ी रख देते हैं, है ना। नहीं तो कभी कभी कोई लता किसी दीवार का सहारा लेकर ऊपर बढ़ती, यदि उस लता को सहारा न मिले तो वह नीचे चली जाती। ठीक उसी प्रकार भक्ति रूपी लता को हम ऊपर बढ़ाना चाहते हैं तो किसी का सहारा चाहिए, और वह सहारा क्या है? महत कृपा। जब तक महत कृपा का सहारा नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति बढ़ेगी नहीं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें भक्ति प्राप्त हो गई, अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हमें पता चल गया भागवत क्या है, भागवत का सार हरिनाम है, हरिनाम जपेंगे, भागवत पढ़ेंगे, अब किसी की आवश्यकता नहीं। परंतु भक्तों, चाहे भागवत हो हरिनाम हो, परंतु साथ ही साथ महत कृपा न हो तब तक हमारी भक्ति उन्नति की ओर प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहां पर और एक उपदेश प्राप्त हुआ कि रुचिक ऋषि के आशीर्वाद से, महत कृपा से उनके पुत्र का स्वभाव बदल गया। जो घोर स्वभाव वाला आने वाला था, अब घोर न आकर शांत स्वभाव वाला। उस पुत्र के विषय में कहते हैं, अतः तरही भवेत पोत्रो, अपने पति रुचिक ऋषि के आशीर्वाद से जमदग्नि ततो अभवत। सत्यवती के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र का नाम हुआ जमदग्नि। और ये जमदग्नि ऋषि शांत थे। चाभूत सुमहत पुण्या कौशिकी लोक पावनी। अब सत्यवती के विषय में थोड़ी सी बात बताकर कथा को आगे बढ़ाते हैं कि ये जमदग्नि ऋषि की जो मां थी सत्यवती, कहते हैं ये सत्यवती ही आगे चलकर लोक पावनी, तीनों लोक को पवित्र करने वाली, पुण्य करने वाली एक बहुत सुंदर नदी बन गई, और उस नदी का नाम देते हैं कौशिकी नदी। आगे चलकर ये कौशिकी नदी बन गई। और एक उपदेश प्राप्त होता है कि इससे एक भूल हो गई थी, सत्यवती से एक भूल हो गई। भक्तों, इस संसार में सब लोगों से भूल होती है, जगत में बड़े बड़े देवताओं से भी, सब समस्त देवी देवताओं के राजा इंद्र से भी जब भूल होती है तो मनुष्य की क्या बात। भूल सबसे होती है, परंतु जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करता है और पश्चाताप करता है और जो भूल हुई है उस भूल को सुधारने का प्रयास करता है, तो कहते हैं तब भी वह व्यक्ति पवित्र हो सकता है। भले पूर्व में उससे भूल हुई है, गलती हुआ है, पाप हुआ है, परंतु यदि वह किसी संत की सेवा करे, महात्माओं की सेवा करे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे, तो वह पूर्व में यदि वह कितना भी पापी हो, परंतु भगवान की भक्ति करने से वह व्यक्ति इतना पवित्र हो सकता है, खुद तो पवित्र हो जाता ही है, परंतु अपने प्रभाव से वह जगत को भी पवित्र कर सकता है। गीता में कृष्ण कहते हैं अपि चेत सुदुराचार। कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी हो, सुदुराचारी हो, परंतु अनन्य भाव से यदि मेरी भक्ति करता है तो वह साधु। सत्यवती के विषय में कहते हैं भले भूल हुई थी, अपने पति के को पूछे बिना वह चरु खा लिया, लेकिन पति की सेवा करके, गुरु की सेवा करके, भगवान की भक्ति करके वह इतनी पवित्र हो गई, कहते हैं कौशिकी नदी बन गई, और दूसरों को पवित्र करने वाली, स्वयं तो पवित्र थी, ये कौशिकी नदी पवित्र थी, परंतु इसमें जो स्नान करे उनको भी पवित्र करने वाली बन गई। और कहते हैं कौशिकी लोक पावनी, और आगे कहते हैं रेणु सुता रेणु काम्बे जमदग्नि उवाहयाम। ये सत्यवती के जो पुत्र थे शांत स्वभाव वाले जमदग्नि, कहते हैं उनका विवाह राजा रेणु की कन्या रेणुका के साथ हुआ। ब्रह्मा जी के हरिवंश पुराण में वर्णन है, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु मनु के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के रेणु और रेणुका के रेणु के रेणु की कन्या थी रेणुका। और महाभारत में अन्य वर्णन है, महाभारत में वेदव्यास लिखते हैं प्रसेनजीत की कन्या का नाम था रेणुका, और हरिवंश पुराण में कहते हैं राजा रेणु की कन्या का नाम था रेणु। जो भी था रेणुका थी, उनका विवाह जमदग्नि ऋषि के साथ हुआ। और कहते हैं तस्याम वे भार्गव ऋषे सुता वसु मदादय, और रेणुका और जमदग्नि ऋषि का विवाह हुआ, और उनके विवाह से यवि यात अज्ञ येषाम राम इति विविश्रुत। रेणुका और जमदग्नि के संग से एक महान पुत्र का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान के अंश से जन्म लिया। और उनका नाम देते हुए कहते हैं एतेषाम राम इति भी, परशुराम जी के रूप में उनके पुत्र का जन्म हुआ। वेदव्यास जी भागवत के प्रथम स्कंद में गिनाते हुए कहते हैं कि अवतारे षोड़श में पश्यन, भगवान श्री कृष्ण के 16वें अवतार के रूप में परशुराम जी का जन्म हुआ। तो इससे परशुराम जी का वर्णन करते हुए इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस परशुराम जी के अवतार का कारण क्या था। यामहु वासुदेवांश है हे यानाम कुलांतकम, इस अवतार का प्रयोजन कहते हुए लिखते हैं कि है वंश में अनेकों असुरों का जन्म हुआ, जिनमें से मुख्य था सहस्त्रबाहु, जिनका नाम था कार्त्यवीर अर्जुन। भगवान दत्तात्रेय की उपासना करके भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया, और भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उनको सहस्त्र भुजा प्राप्त हुई, 1000 भुजा। कहते हैं वे जब बाण चलाते थे तो एक साथ 500 बाण चलाते थे। तो ऐसे सहस्त्र बाहु का वध करने के लिए इस सृष्टि में राजाओं के द्वारा जो पाखंड हो रहा था, इस पाखंड को नष्ट करने के लिए परशुराम जी का अवतार हुआ। आज के श्लोक में कहते हैं द्रुप्तम शत्रम भुवो भारम अब्राह्मण्यम अनिशतम रजस्तमो वृत्त महन फलग्युन अपि कृते अमहसी। परशुराम जी का जन्म, जो लोग ब्राह्मणों से विरुद्ध कर्म कर रहे थे, शास्त्र से विरुद्ध कर्म कर रहे थे, ऐसे क्षत्रियों का विनाश करने के लिए हुआ। आगे चलकर यह कथा आती है, जमदग्नि ऋषि एक समय की बात यज्ञ कर रहे थे अपनी पत्नी रेणुका को उस यज्ञ संपन्न करने के लिए नदी से जल भरने के लिए भेजा। नदी में जल भरने गई उस समय चित्ररथ विचित्र रथ को देवताओं के देवतागण वहां पर आए थे, तो देवता और देवताओं के रथ का दर्शन करने के लिए रेणुका वहां पर कुछ समय के लिए खड़ी रह गई, और वहां पर यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। रेणुका को यज्ञ में आने में देरी हो गई, और उस समय जमदग्नि ऋषि ने अपने ध्यान में देख लिया कि ये देवताओं को और उसके रथ को देखने में उन्होंने देरी कर दी। जैसे ही रेणुका आई जमदग्नि क्रोधित हो गए। यहां पर लिखा है उनके जमदग्नि के अनेकों पुत्र थे, तो उनमें से अपने पुत्रों को कहा कि तुम्हारी माँ ने बहुत बड़ा अपमान किया है, अपराध किया है, गलत कर्म किया है, तुम अपनी माँ का गला काट दो। जमदग्नि ऋषि के जितने भी पुत्र थे सब लोग ने ना कह दिया, माँ का गला हरे हाथ से कैसे काटेंगे। परंतु उस समय वह घोर स्वभाव वाला पुत्र परशुराम वन में गया था, वन से हाथ में फरसू था, लकड़े थे, और जैसे ही परशुराम जी आए जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी से कहा बेटा परशुराम तुम्हारी माँ को मार दो, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरा अपमान किया है। परशुराम ने तुरंत अपने हाथ से परसू उठाया और अपनी माँ का गला काट दिया। बोले माँ मर गई? बोले हाँ पिताजी। बोले अब तुम्हारे सभी भाई का गला काट दो। क्यों पिताजी? बोले वो मेरी बात नहीं मानते। परशुराम जी ने अपने सभी भाइयों का गला काट दिया। मन में ऐसा लग सकता है कि भगवान होकर भी उन्होंने अपनी माँ का गला काटा, अपने भाई का गला काटा, परंतु आचार्यगण कहते हैं परशुराम जी ने इसलिए गला काटा क्योंकि वे जानते कि जब मैं मेरी पिता की आज्ञा को पूर्ण करूंगा तो वो प्रसन्न होंगे, और मेरे पिताजी यदि प्रसन्न हो गए तो मुझे कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए परशुराम जी को, जब परशुराम जी ने माता और भाइयों का गला काट दिया, जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए और कहा, बेटा आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी एक काम कीजिए, मां को जीवित कर दीजिए और ये भाइयों को भी जीवित कर दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि मेरी मां को और मेरे भाई को स्वप्न में भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने कभी इसका गला काटा था, नहीं तो आजीवन द्वेष और झगड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार परशुराम जी जानते थे कि मेरे पिता में ये सामर्थ्य है कि वे कुछ भी दे सकते। आज के पुत्रों को अपने पिता का, परशुराम जी का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिता यदि दिमाग बिगड़ गया और कह दे कि बेटा काट दो अपनी मां का गला, तो ऐसा कैसे काटेंगे, नहीं काटना चाहिए। परंतु पिता के प्रभाव को जानते थे इसलिए काटा था। जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ, तब जब भगवान विष्णु का वरण करने जा रही थी, श्रीधर स्वामी जी परशुराम जी को याद करते हैं। देवी लक्ष्मी जी सोचती हैं, धर्म क्वचित तत्र न भूत सौरिदम, इस संसार में कई लोगों में धर्म है, कर्तव्य का पालन करने की शक्ति है, लेकिन जीवों के प्रति दया नहीं है। श्रीधर स्वामी वहां पर उदाहरण देते हुए परशुराम का नाम लेते हैं। कर्तव्य का पालन करने में निष्ठ, पिता ने कहा गला काट दो, काट दिया, लेकिन जीवों के प्रति दया, इतनी भी दया नहीं आई कि मां को न मारे, भाई को न मारे। खैर वहां से एक दृष्टांत दिया गया था, परंतु यहां पर पिता की आज्ञा को परशुराम ने पूर्ण की। महाश्मती नदी पुर का राजा, महाश्मती नगरी का राजा जिसका नाम था सहस्त्रबाहु, अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर आया, वन के मार्ग से निकल रहा था, जमदग्नि ऋषि का आश्रम आया, कहा हमको भूख लगी है, भोजन कराओ। जमदग्नि ऋषि ने तुरंत सबको भोजन कराया, कुछ ही मिनटों में अनेकों व्यंजन बन गए, भोजन कराया। सहस्त्रबाहु को प्रश्न हुआ, बोले ये फक्कड़ बाबा जंगल में रह रहा है और इतनी बड़ी सेना के लिए 56 भोग इतनी तुरंत कैसे बना दिया, पूछ आखिर कारण क्या है, इतने सारे व्यंजन बन गए। बोले मेरे पास कामधेनु गाय, जो भी कामना करो दे देती। तब सहस्त्रबाहु ने कहा, ये गाय तो तुम्हारी कोई, ये गाय की तुमको कोई आवश्यकता नहीं, इसकी आवश्यकता तो मुझे है, आप मुझे दे दो। जमदग्नि ऋषि ने कहा मैं नहीं दे सकता हूं। बोले मैं लेकर जाऊंगा, नहीं दे सकता हूं। जब बहुत ना कहा तो सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला, वध कर दिया और वह गाय लेकर चला गया। उसी समय परशुराम जी बाद में आए, अपनी मां रेणुका को रोते हुए देखा, 21 बार छाती को पीटते हुए देखा और पूछा, मां क्या हुआ? बोले आपके पिता को मार डाला। परशुराम जी को पहले से क्रोध तो था ही, यहां पर लिखा है वे आई थे दुष्टों का विनाश करने के लिए, अब मौका मिल गया, देख ही रहे थे मौका। और उसी समय परशुराम जी क्रोधित हुए और अपना फरसु पूरे संसार में चलाया। कहते हैं दुनिया में जितने भी क्षत्रिय थे, सबसे पहले सहस्त्रबाहु की सर भुजाओं को काटा, सहस्त्रबाहु का वध किया और संसार में समस्त क्षत्रियों का विनाश किया। और क्षत्रियों का विनाश करके परशुराम जी ने सोचा, ये क्षत्रिय सब बिगड़ गए हैं, ये संसार का राज्य ब्राह्मणों के हाथ में दे दूं। उन्होंने ब्राह्मणों को राजा बना दिया, ये संसार का राज्य ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया। कुछ थोड़े बहुत जो क्षत्रिय बचे थे धीरे 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 बढ़ने लगे, और क्षत्रिय ने सोचा ब्राह्मण को कितना भी कुछ मिल जाए लेकिन भोजन के बड़े शौकीन होते हैं। ब्राह्मणों को अपने घर पर निमंत्रण देते थे, बहुत सुंदर लड्डू भोजन खिलाते थे, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते थे कि हे ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दीजिए, और ब्राह्मणों को खिला पिलाकर ब्राह्मणों के हाथ से वह राज्य का शासन अपने हाथ में क्षत्रियों ने फिर से ले लिया। फिर से इस जगत में क्षत्रियों का बढ़ावा हुआ और क्षत्रियों के द्वारा अनेकों अनर्थ होने लगे। फिर से परशुराम जी ने अपना फरसु उठाया और इस जगत के जितने भी क्षत्रिय थे समस्त क्षत्रियों का विध्वंस किया और ब्राह्मणों के हाथों में राज्य दे दिया। इस प्रकार 21 बार राज्य दिया और 21 बार इस जगत में क्षत्रियों का उत्थान हुआ और परशुराम ने क्षत्रियों का विध्वंस किया। तो कहते हैं क्षत्रियों का विनाश करने के लिए परशुराम जी का प्राकट्य हुआ। श्री प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में लिखते हैं क्षत्रियों के ऊपर जहां परशुराम जी विनाश कर रहे हैं, इस संसार में भी कई ऐसे क्षत्रिय हैं। वास्तव में क्षत्रिय का कार्य है प्रजा के ऊपर शासन करना, इस राज्य को चलाना। और प्रभुपाद जी लिखते हैं क्षत्रियों को चाहिए, राजा को चाहिए ब्राह्मणों से बुद्धि लेकर प्रजा का पालन करे, राज्य का शासन करे। परंतु आज के राजा ब्राह्मणों से बुद्धि न लेकर अपने मनमाने ढंग से प्रजा के ऊपर शासन करते हैं, इसलिए राजा भी दुखी और प्रजा भी दुखी। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करे, प्रजा को सुखी करे। और राजा तब ही प्रजा का ठीक रूप से पालन कर सकता है जब तक शास्त्र के ज्ञान को ग्रहण न करे, ब्राह्मण की बुद्धि को स्वीकार करके शासन न करे। परंतु आज के राजा ब्राह्मणों को नकार रहे हैं, शास्त्र के ज्ञान को छोड़कर अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, अतः संसार का शासन बिगड़ा है। और जिस राजा की प्रजा दुखी होती है, कहते हैं राज्य की प्रजा यदि कोई अच्छा पुण्य करती है, अच्छा काम करती है, तो इसका छठा भाग राजा को मिलता है। परंतु राज्य की प्रजा यदि दुखी होती है तो उसका फल भी राजा को मिलता है। रामायण में लिखा है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है सोन्द्रीप अवश्य नरक अधिकारी, वो राजा निश्चित नरक का अधिकारी। इसलिए राजा को चाहिए कि ब्राह्मणों से बुद्धि लेकर प्रजा का शासन करे। आज के राजा ब्राह्मणों को ही नष्ट करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी वर्तमान समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्तमान समय में राजा बिगड़े हैं और शासन भी बिगड़ा है, और अतः संसार में जो प्रजा है सब दुखी हो रही है। परंतु उस समय उस राजाओं को क्षत्रियों को मारने के लिए परशुराम जी का फरसा और समस्त क्षत्रियों का विध्वंस कर दिया और संसार में शांति आ गई। आज के समय में हम परशुराम को कहां ढूंढने जाएंगे? तब श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के अंत में कहते हैं कि परशुराम को और उनके फरसु को ढूंढने की जरूरत नहीं, ये दोनों हमारे पास हैं। हमारी जीवा जो है फरसु के समान है और परशुराम जी का नाम जो है राम, वो महामंत्र के समान है। हमारी जीवा के द्वारा महामंत्र को जपेंगे तो इस संसार में जितनी भी आसुरी प्रकृति है, आसुरी जो राजा है, वे सबका विनाश हो जाएगा और समाज में शांति छा जाएगी। हरे कृष्णा हरे राम। श्री प्रभुपाद जी ने किसी जगह पर कहा है संसार में लोग चाहते हैं विश्व शांति हो जाए, विश्व में शांति आ जाए, परंतु विश्व में शांति लाने के लिए सबसे पहले राजाओं को भक्त बनना होगा। राजाओं के गले में कंठी तिलक और उनके हाथ में यदि झोली माला आ गई, राजा यदि भक्त बन गए तो निश्चित प्रजा भक्त बनेगी और प्रजा में शांति आ जाएगी। तो इस संसार में आज भी हम परशुराम की तरह आसुरी प्रकृति का विनाश करना चाहते हैं तो हमारी परशु रूपी जिवा पर भगवान के महामंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान का नाम लेकर निश्चित हम इस संसार में आसुरी वृत्ति का नाश करके परम सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कल रात को ही दयामूर्ति प्रभु का फोन आया, इसलिए प्रवचन की प्रिपरेशन करने का कोई अवकाश नहीं मिला। जो भी कुंडल कृष्ण प्रभु गुड़ाकेश प्रभु पिछले दिनों में भक्तों से जो सुना था उसी बात को आपके बीच में दोहराया, फिर भी कुछ गलती रह गई हो, त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा और कृपा बनाइए रखिएगा कि हम भी आपकी तरह भजन में लग सके और भक्ति कर सके। हरे कृष्ण वंशा कल्पतरु व्यस्य कृपा सिंधु।